हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तब झलक टिश्यू पेपर में अपना एक्स्ट्रा खाना निकाल चुकी थी और रणविजय के हाथ से पानी लेकर पीने लगी। वहीं सिद्धार्थ, जो खुद पानी लेकर खड़ा था, अब गुस्से से एकदम लाल हो चुका था, क्योंकि उसकी नज़रें रणविजय के उस हाथ पर थीं जो इस वक्त झलक की कमर पर था। वो उसकी कमर को सहला रहा था, क्योंकि झलक को काफ़ी ज़्यादा खांसी होना शुरू हो गई थी। अब देर न करते हुए झलक ने जल्दी से पानी का पूरा ग्लास खत्म किया और गहरी गहरी सांस लेने के बाद रणविजय को देखते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। फिर अनजाने में झलक की नज़र सिद्धार्थ पर पड़ी। सिद्धार्थ के हाथों में भी पानी का ग्लास था, क्योंकि जब झलक को खांसी शुरू हुई थी तभी सिद्धार्थ भी पानी का ग्लास लेकर उसकी ओर बढ़ा था। लेकिन थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि तब तक रणविजय झलक को पानी का ग्लास दे चुका था। फिलहाल ये सब देखकर सिद्धार्थ के तन बदन में पूरी तरह से आग लग चुकी थी। वहीं झलक ने भी सिद्धार्थ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और रणविजय को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे तो सांस ही नहीं आ रही थी। तब तक दादी आ गईं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें आराम से खाना चाहिए, लेकिन तुम हो कि मेरी कोई बात नहीं मानती। तब झलक हल्का सा मुस्कुराई और बोली, दादी अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, प्लीज़ आप लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कीजिए। ये बोलकर झलक ने दादी को बॉर्डर टेबल पर एक साथ बैठने के लिए कह दिया। लेकिन रणविजय की नज़रें अब पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ झलक पर थीं। वो बार बार झलक को कुछ अलग नज़रों से देख रहा था। वहीं झलक भी अब हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी कि रणविजय इस वक्त उसे ही देख रहा है, क्योंकि उसके एक्सप्रेशंस उसकी नज़रों की गवाही दे रहे थे। फिलहाल झलक को थोड़ा अजीब लग रहा था। रणविजय से उसे कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी की फीलिंग आ रही थी। हालांकि वो ज़्यादातर चीज़ों को इग्नोर किया करती थी, लेकिन न जाने क्यों आज उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रणविजय को वो पहले से जानती हो, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कैसे। माहौल धीरे धीरे सामान्य हो गया। नाश्ता बहुत ही अच्छे माहौल में किया गया। इस दौरान पूरे 20 मिनट तक सिद्धार्थ और झलक के बीच कोई बात नहीं हुई, केवल दोनों बीच बीच में एक दूसरे को आंखों ही आंखों में टशन दे रहे थे। वहीं झलक की हालत थोड़ी उलझन भरी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने रणविजय को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कहाँ, क्योंकि उसके मुताबिक रणविजय तो कई सालों के बाद लौट कर आया था, तो भला वो इस तरह से उससे कैसे मिल सकती थी। फिलहाल सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक झलक को याद आया कि उसे तो आज अंगूठी बेचने के लिए भी जाना है। उसे जल्दी से निकलना था। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो कपड़े बदल सके, क्योंकि साड़ी को अच्छे से पहनने के चक्कर में उसने काफ़ी सेफ्टी पिन्स वगैरह लगाई थीं। उसे उतारने में अच्छा खासा वक्त लग जाता, इसलिए उसने तुरंत दादी की ओर देखकर कहा, दादी मुझे अब जाना होगा, ज़रूरी काम है, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। अब जैसे ही झलक जाने लगी, अचानक रणविजय की आंखों में कुछ अजीब सा भाव आया, जिसे सिद्धार्थ ने साफ देख लिया था। फिलहाल सिद्धार्थ खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो मेरे साथ। अब जैसे ही सिद्धार्थ ने ये कहा, झलक ने पूरी तरह से उसे इग्नोर कर दिया और बोली, नहीं नहीं, आपको बेकार में परेशानी होगी, मैं चली जाऊंगी। लेकिन तभी रणविजय भी उठ खड़ा हुआ और बोला, अरे झलक जी, दरअसल मुझे भी जाना है, तो मैंने सोचा कि अगर आपको कुछ ज़रूरी काम है तो मैं आपके साथ चलता हूँ, आई होप आप मना नहीं करेंगी। अब झलक तो वैसे भी किसी को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सिद्धार्थ रणविजय की बात सुनकर अंदर ही अंदर जल चुका है, उसकी आंखों में साफ गुस्सा दिखाई देने लगा था। मतलब वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अब झलक इस मौके को अपने हाथ से कैसे जाने देती। उसने तुरंत रणविजय की बात मानते हुए कहा, ठीक है रणविजय जी, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं चलती हूँ आपके साथ। तभी रणविजय मुस्कुराते हुए बोला, बट मुझे रणविजय जी नहीं, सिर्फ रणविजय कहिए। अब ये सुनकर झलक को कुछ खास अच्छा नहीं लगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ को तड़पाने के लिए उसने उसके साथ जाने का फैसला कर लिया और उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिलहाल दादी माँ काफ़ी खुश हो गई थीं और उन दोनों को जाते हुए मुस्कुराकर देख रही थीं और बोली थीं, काश ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए मेरी आँखों के सामने रहें। अब सिद्धार्थ के लिए ये सारी बातें सुनना बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर था। वो तुरंत दादी माँ की ओर देखकर बोला, दादी आप क्या कर रही हैं? आखिरकार आप इस तरह से कैसे रणविजय को झलक की जिंदगी में ला सकती हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रणविजय क्या है और क्या नहीं है। अब ये सुनकर दादी माँ का चेहरा एकदम सख्त हो गया और उन्होंने सिद्धार्थ को देखकर बोला, तुम होते कौन हो इस तरह बोलने वाले और किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले? शायद तुम भूल रहे हो कि शहर में तुम्हारी क्या छवि है और लोग तुम्हें क्या कहकर पुकारते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम एक नंबर के गुंडे हो? ये बात पूरा शहर जानता है। भले ही तुम्हारे डर की वजह से कोई तुम्हारे मुँह पर ये बात ना कहे, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुनो। रणविजय ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से किसी की जान गई हो, लेकिन तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। पहले तुम ये बात कैसे भूल सकते हो? दादी ने सीधे तरीके से सिद्धार्थ को डांट दिया। सिद्धार्थ को काफी तेज गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत करते हुए बोला, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी दादी गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए बोली, अच्छा झलक के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, इसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी झलक के लिए तो पहले तुम्हें ही सोचने की जरूरत थी, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसे धोखा दिया, उसे इतना मजबूर किया कि खुद बखुद उसे अपने बच्चों की जान लेनी पड़ी। क्या तुम्हें इसका एहसास है? अब तुम भी यहाँ सही और गलत के बारे में बातें कर रहे हो। झलक के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, ये हम खुद देख लेंगे। अब तुम चले जाओ, जाकर अपना काम करो। सिद्धार्थ इस तरह की बातें सुनकर चुप रह गया। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि दादी उसे इस तरह डांटेंगी, लेकिन जिस तरह रणविजय झलक को साथ लेकर गया था और उसकी एटीट्यूड को देखकर गया था, ये सब देखकर सिद्धार्थ के अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया। अब वो झलक के साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता था। फिलहाल उसने फटाफट से कुछ लोगों को उनके पीछा भेजने का प्लान बनाया। वहीं झलक रणविजय के साथ बाहर आ गई थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में अजीब सी कसक थी, क्योंकि रणविजय के सामने वो अंगूठी बेचने के लिए कैसे जा सकती थी? और रणविजय अपनी गहरी नजरों से सिर्फ झलक के शरीर को स्कैन कर रहा था। झलक के हाथ पैर पर पड़े घावों को देखकर उसने कहा, झलक ये आपको क्या हुआ है, ये चोट कहाँ लगी? तभी झलक ने उसे बताया कि ये घाव कोई और नहीं बल्कि उस सांप के कांटे का निशान था जो उसे पहाड़ी क्षेत्र में लगा था। अचानक जो कुछ हुआ था वो सब झलक के सामने आने लगा। उसके दिल में डर और घबराहट पैदा हो गई और उसे याद आया कि कितने बार कुछ लोग झलक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुके थे। सारी चीजें देखकर झलक की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पूरी तरह समझ चुकी थी कि ओबेरॉय परिवार बने ही उस नकाबपोश आदमी को वहाँ भेजा होगा उसे मारने के लिए। फिलहाल झलक रणविजय को ऐसे देख रही थी मानो कि वो उस इंसान को अच्छी तरह जानती और पहचानती हो।
वही झलक ने अचानक बड़े ध्यान से रणविजय की ओर देखा। रणविजय की आंखें उसे घूर रही थीं, जैसे वो उसकी बात को लेकर गंभीर था। अब रणविजय को यूं देखकर झलक के अंदर कुछ अजीब सा सिहरन पैदा हो गया। उसे अजीब सी फीलिंग्स का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वो नकाबपोश आदमी कहीं रणविजय ही तो नहीं था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। उसके दिल में उलझन थी कि भला इतना बड़ा करोड़पति बिलियनियर, इतना ताकतवर इंसान पहाड़ी क्षेत्र में नकाब के पीछे क्यों हो सकता है और वो झलक को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा। झलक का दिमाग तेजी से सोच रहा था।